नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के संचालन की सराहना की। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत के 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की रेपो दर में कटौती पर आज से 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट लंदन के ओवल में रोमांचक दौर में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने को स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की यह परियोजना देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और हमारे नेट जीरो दृष्टिकोण को बल प्रदान करता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन की गई यह परियोजना हरित बंदरगाह अवसंरचना में भारत की प्रगति को दर्शाती है। मात्र 4 महीनों में निर्मित यह संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2025 में घोषित 10 मेगावाट की एक बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना का पहला मॉड्यूल है। 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ यह सुविधा भारत के नेट जीरो यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तर के हरित हाइड्रोजन संयंत्र को संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित यह संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक मानक स्थापित करता है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज दोपहर बाद भारत की 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान श्री मार्कोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का भी श्री मार्कोस से भेंट करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति मार्कोस फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे।
भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में एक मजबूत साझेदारी विकसित की है। दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण का एक अभिन्न स्तंभ है। राष्ट्रपति मार्कोस की यह राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह यात्रा दोनों नेताओं के लिए भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर है। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
निर्वाचन आयोग ने 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के विवाद में फंसे राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को जांच के लिए आयोग में विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार में पटना जिला के दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कहा है कि श्री यादव ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में जो मतदाता पहचान पत्र दिखाया था वो निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवादों में घिरते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जहां उन्हें पिछले दिनों संवाददाताओं के सामने प्रदर्शित वोटर आईडी कार्ड की मूल प्रति जांच के लिए आयोग के समक्ष जमा करने को कहा है, वहीं भाजपा सहित एनडीए के अन्य नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव का नाम दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। दीघा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री तेजस्वी यादव द्वारा निर्वाचन आयोग के सामने गलत तथ्य पेश किए जाने पर सवाल उठाया।
सर्वोच्च नेता के हैं दो एपिक कार्ड, तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये SIR से डरते हैं? तो सोचिए RJD के, कांग्रेस के, जो तमाम लोग आदि हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो दो फर्जी वोटर कार्ड बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है?
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य हथकरघा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वारंगल में प्रस्तावित काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होने से लगभग 2,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हैदराबाद के शिल्परामम में आयोजित कार्यक्रम में श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने 100 इलेक्ट्रॉनिक जैकवार्ड बुनाई मशीनें वितरित की हैं और 31 हथकरघा उत्पादक कंपनियों की स्थापना में मदद की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार इस संगीत संध्या में प्रस्तुति देंगे। एक रिपोर्ट।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित सप्तसुर सात राष्ट्र एक राग नामक इस समारोह में 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यह समारोह बिम्स्टेक सहयोग में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इस सांस्कृतिक पहल की शुरुआत इस वर्ष अप्रैल में थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह की मेजबानी की पुष्टि से हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की इस असाधारण संध्या का आनंद लेने के लिए सभी क्षेत्रों के दर्शक निशुल्क शामिल हो सकते हैं। सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है तथा मेहमानों से अनुरोध किया गया है कि शाम 6 बजे तक अपनी सीट पर पहुंच जाएं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दी गई है। कश्मीर के डिविजनल आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने बताया कि हाल ही में हुई तेज बारिश के कारण बालतल और पहलगाम मार्गों पर मरम्मत तथा रखरखाव का काम कराना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर मरम्मत कर्मियों और मशीनों की निरंतर तैनाती के कारण यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज श्रावण के अंतिम सोमवार पर मंदिर के कपाट तड़के खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावण की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा मंदिर समेत सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों, गर्भगृह, माता पार्वती मंदिर और अन्य मंदिरों को फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सोमवार की रात बेलपत्र पूजा की विशेष परंपरा भी निभाई जाएगी। सोमवार को मंदिर में जलार्पण के लिए सिर्फ 2 विकल्प रहेंगे। पहला मुख्य अर्घा के लिए सामान्य कतार और दूसरा बाबा मंदिर के निकास द्वार पर स्थित बाह्य अर्घा। वहीं दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में भी जल चढ़ाने के लिए कांवरियों की विशेष भीड़ मौजूद है। श्रावण मेला 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। यह मेला, जिसे कांवर यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती पर चर्चा की जाएगी। समिति के निर्णयों की घोषणा बुधवार को होगी। भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 58% बढ़कर $7.72 अरब हो गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस बढ़त में सर्वाधिक योगदान एप्पल का रहा है, जिसने अपने अनुबंधित निर्माताओं के माध्यम से $6 अरब मूल्य के iPhone निर्यात किए। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
क्रिकेट में ओवल में खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के पांचवे दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन और चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करके सीरीज बराबर करने के लिए बाकी बचे 4 विकेट लेने होंगे। इससे पहले 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रुक और जो रूट के शानदार शतकों ने की। हालांकि भारत ने कल के दिन अंत में बेहतर गेंदबाजी करते हुए शानदार वापसी की। भारतीय टीम ने सिर्फ 36 रन देकर तेजी से 3 विकेट चटकाए, जिससे मैच में वापसी की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। भारत ने अपनी दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के शानदार 118 रन और आकाशदीप रविंद्र जडेजा तथा वॉशिंगटन सुंदर के महत्वपूर्ण अर्धशतकों की बदौलत 396 रनों का प्रभावशाली स्कोर खड़ा किया। भारत फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। इसके अलावा भारतीय एथलीट और पूर्व एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अबू बकर ने कल रात कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया है। अबू बकर ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर ये जीत हासिल की।
और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 37 तहसीलों और 402 गांवों में 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 17 जिले कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। वर्तमान में कुल 905 बाढ़ आश्रय स्थल बनाए गए हैं। 757 स्वास्थ्य दल चिकित्सा जांच कर रहे हैं, जबकि बदलती स्थिति पर नजर रखने के लिए 1,193 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। बाढ़ से अब तक 343 घरों को नुकसान पहुंचा है और 4,015 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर खुद नजर रख रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी शिमला सहित अधिकांश स्थानों में लगातार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला लाहौल स्पीति में ग्राम्फू बताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग 505 चात्रू के पास भूस्खलन के चलते अवरुद्ध है, जबकि राज्य में 296 अन्य संपर्क सड़कें भी यातायात के लिए बाधित हैं। इसके अलावा प्रदेश में 134 बिजली के ट्रांसफार्मर और 266 पेयजल योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राज्य के वित्त और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2 प्रमुख रिपोर्ट पेश करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज कुमार।
धन्यवाद विशाल। 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निर्वाचन आयोग को मतदाता पहचान पत्र पर घेरने चले तेजस्वी, खुद घिरे। आयोग ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष को नोटिस भेजकर वोटर कार्ड की मूल प्रति मांगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात पर भी अखबारों की नजर है। जनसत्ता का कहना है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है मुलाकात। सरकार ने हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक रोगों से संबंधित दवाओं की कीमतें घटाई। हिंदुस्तान के अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की।
धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के संचालन की सराहना की। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत की 5 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट लंदन के ओवल में रोमांचक दौर में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।